समझ बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय जय गोपीचन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यश जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन जय यश जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी जय 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 राधा माधव जय कुंज बिहारी जय रा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय रा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिव सदी गौर भक्तवृंद जय सभी भक्त लोग गाइए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Srila Prabhupada. Pada Prabhupad, 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 Jayo Jayo Prabhupad. Nam Sankirtan ki jay, Jayom Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Ashto Shatra Shat. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jay. PBD Founder Acharya Srila Prabhupada ki Anantakoti Vaishnava Vrind ki jay. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jay. Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jay. Nitai Gaur Premanande Haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं स्कंद आठवां, और स्कंद का शीर्षक है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। और आज हम लोग श्लोक लेंगे नंबर 17, 18 और 19। तो हम लोग साथ में करेंगे 17 और 18, 19 मैं बोलूंगा। श्री शुक वाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा वसुरायतु धना जगधूम अभ्याद्रवन सुधा। श्री शुक वाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा वसुरायताधुना जगदुम अभ्याद्रवम शुधा। श्री शुक वाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा वासुरा यथाधुना जगदुम अभ्याद्रवम शुधा। श्री शुक वाच उपनिषदम् जगदुम भद्रवनम सुधा। और कोई? श्री शुक वाच इति मंत्रोपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायतु धाना जगुधमा भयाद्रवं शुधा इति मंत्रो उपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायतु धाना चतुधमा भयं शुधा इति मंत्रो उपनिषदम् व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायतु धाना। शब्दार्थ श्री शुका सॉरी श्री शुका वाचा। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार मंत्र उपनिषदम् वैदिक मंत्र स्वयं भुवा मनु द्वारा उच्चारित व्याहरन्तम् सिखाए गए या उच्चरित समाहितम् मन को केंद्रित किया भौतिक अवस्थाओं से विशुद्ध हुए बिना दृष्ट्वा देखकर असुरहा असुरगण यतुधना राक्षस गण जगधुमा निगल जाना चाहा अभ्यद्रवम तेजी से दौड़ते हुए शुधा अपनी भूख को शांत करने के लिए। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा शिला शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार स्वयंभुवा मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधिस्थ हो गए। उन्हें देखकर राक्षसों तथा सुरगण ने अत्यंत भूखे होने के कारण उन्हें निगल जाना चाहा अथवा वे उनके पीछे अत्यंत तेजी से दौड़े। श्लोका नंबर 18। तमस्तथा विशितं भिक्षया यज्ञः सर्वगतो हरि यमः परिव्रतो देवार्हत वसासा त्रिविष्टपन्। अनुवाद, प्रत्येक हृदय में निवास करने वाले भगवान श्री विष्णु यज्ञपति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि राक्षस तथा असुर स्वयंभुआ मनु को निगल जाने वाले हैं। इस प्रकार यम नाम के अपने पुत्रों तथा अन्य सभी देवताओं को साथ लेकर श्री भगवान ने उन असुरों तथा राक्षसों को मार डाला। तब उन्होंने इंद्र का पद ग्रहण किया और स्वर्ग लोक पर शासन करने लगे।
स्वरोचिष्वद्वितस्तु मनुरग्ने सुतो भवे द्योमसुषेण रोचिस्मा प्रमुखास्तस्य चात्मजः।
अग्नि का पुत्र स्वरोचिचश दूसरा मनु बना। उसके अनेक पुत्रों में धूमत, सुशेषण तथा रोचिष्मत प्रमुख थे।
मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः ऋष्यो अमास्वतरश्च हरे सद्विदम उच्यते।
पूर्ण पुरुषोत्तम, भगवान के अनेक अवतार हैं। मनु, मनुपुत्रा, मनु के पुत्र, स्वर्ग लोगों का राजा तथा सप्त ऋषि, ये सभी श्री भगवान के अंश अवतार हैं। स्वयं मनु, उनके पुत्र प्रियव्रता तथा उत्तनपाद, दक्ष द्वारा उत्पादन, देवता तथा मरीचि जैसे ऋषि, ये सभी स्वयंभुआ मनु के राज्य काल में श्री भगवान के अंश अवतार थे। उस काल में श्री भगवान के अवतार यज्ञ ने स्वर्ग लोकों के शासन का राज्यभार संभाला। अगला मनु स्वरोचिचश था। अगले 11 श्लोकों में मनुओं, ऋषियों तथा देवताओं का और भी विस्तार वर्णन हुआ है।
ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपिशा गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमा ममी हरि प्रिये। नमो विष्णु पदाया कृष्णा प्रस्थाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पशते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा रामा राम हरे हरे।
हरे कृष्णा। देखिए, हम इस 8वें स्कंद के बहुत ही सुंदर अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। अगर हम बात करें जब कि कृष्ण कथा हो रही है, तो कृष्ण कथा न केवल कृष्ण की होती है, कृष्णा प्लस उनके भक्त, क्योंकि बिना भगवान के भक्तों के कृष्ण कथा अधूरी है। कृष्ण अधूरे हैं उनके भक्त के बगैर, भक्त अधूरा है भगवान के बगैर। तो देखिए, अगर इससे पहले जो हमारा 7वां स्कंद था, एक बहुत ही सुंदर लीला चल रही थी प्रह्लाद महाराज की, तो उसमें बताया जाता है कि टोटल 15 अध्याय थे उस स्कंद के अंदर, और 7 तो 7 वो सिर्फ प्रह्लाद महाराज के ऊपर ही थे। तो श्रीमद् भागवतम भगवान खुद ही बोलते हैं पद्म पुराण में, आराधनम परम आराधनम आराधनम सर्वेशम परम आराधनम विष्णु तत्परित्रवेण देवी तदियानाम सम अर्चनम। कि मेरी भगवान शिव पार्वती माता को बताते हैं भगवान कि सबसे बड़ी आराधना भगवान श्री विष्णु की है, और भगवान श्री विष्णु खुद बोलते हैं मुझसे भी बड़ी आराधना मेरे परम भक्तों की है। अभी देखिए इस जो अध्याय है एक नंबर स्कंद का, इसका शीर्षक है ब्रह्मांड के प्रशासक मनु। हम सब प्रजातियों को बोला जाता है हम सब क्या है, मनुष्य। तो जो मनुष्य शब्द है ये मनु जी से आया हुआ है, स्वयंभू मनु, जो कि सर्वप्रथम है यहां पर इस अध्याय में लगे हुए हैं। अगर हम देखें पहले 7 कैंटो तक सुखदेव गोस्वामी जी ने स्वयंभू मनु के जितने भी उनकी बेटियां थी, बेटे थे, उनके बारे में कितना सुंदर से डिस्क्रिप्शन दिया, उनको ग्लोरीफाई किया। तो उनके कितने थे बच्चे स्वयंभू मनु के, 5, 3 पुत्री और 2 पुत्र थे। पुत्री का नाम था अकुति, प्रसूति और देवहूति, और उनके 2 फेमस पुत्र थे महाराज प्रियव्रता और उत्तनापाद। देखिए अब जो कैंटो 3 है स्कंद 3, उसके अंदर माता देवहूति और कर्दामा मुनि जी के संग से कौन उत्पन्न हुआ, भगवान कपिला देव, तो उनके बारे में विवरण किया गया। फिर उसके बाद अकुति जी का कौन हुआ पुत्र, यज्ञ। तो हमने जो आज के जो 3 श्लोक है इनमें से देखा कि भगवान यज्ञ अर्पित हुए हैं, यहां पर भगवान यज्ञ आए हैं। देखिए कितने महान है स्वयंभू मनु कि उनके बच्चों के गर्भ से कौन ले रहे हैं जन्म, साक्षात भगवान। साक्षात भगवान अलग अलग रूपों में आ रहे हैं, यज्ञ रूप में। उनका एक नाम है भगवान विष्णु का यज्ञ, और यज्ञपति भी बोलते हैं। कहां पे हम ये पढ़ते हैं, भागवत गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, कि जितने भी यज्ञ हैं उनका भोक्ता मैं ही हूं, इसलिए उनको यज्ञपति बोला जाता है। उनको हर चीज अर्पित की जाती है। भागवत गीता के 3rd श्लोक के 9वें अध्याय में भी कहा गया है यज्ञनार्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको कर्म वंदना, जो यज्ञ है यज्ञपति को ही अर्पित किया जाता है, उनकी प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है यहाँ पर। अभी सोचने वाली बात है कि अगर भगवान की इसमें लीला चल रही है तो इन सब चीजों का क्या महत्व है, हम क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं, स्वयंभू मनु के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके यू नो इतने इतने सारे चल रहे, हमें तो भगवान के बारे में बातें करना चाहिए, नहीं ऐसा है क्या? नहीं। देखिए इसी अध्याय के जो कि 2रे और 3रे श्लोक में हमारे जो परीक्षित महाराज हैं उनको सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे कि आपको और भी कुछ जानने की इच्छा है क्या, आप कुछ और जानना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास तो कितने दिन बड़े हैं, 7 दिन बचे हैं, आपके पास 7 दिन बचे हैं। उन 7 दिनों में जो भौतिक जगत का इंसान है वो सीधा बोलता है मुझे कॉन्क्लूजन पे आना है, मुझे सीधा रासलीला बताओ, इंटरनल अफेयर जो भगवान के अंतरंगा है लीलाएं, सीधा मुझे उनके बारे में बताओ। नहीं, परीक्षित महाराज कह रहे मेरे पास बहुत टाइम है, 7 दिन बचे हैं, 7 दिन बचे हैं, मुझे भगवान के बाहिरंगा जो कि बाहर की जो लीलाएं हैं एक्सटर्नल वो कितने शक्तिशाली है मुझे उनके बारे में बताओ। आपके लिए मैं वो 2 पढ़ लेता हूं श्लोक ताकि आपको पता लगे कि कहां से क्या चल रहा है यहां पर। देखिए यहां पे परीक्षित महाराज बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी का, हे विद्वान ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, बड़े बड़े विद्वान पुरुष जो महान बुद्धिमान है। देखिए जो बड़े बड़े महापुरुष जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं, विभिन्न मनवंतरों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकल्पों का तथा उनके प्रकट्य का वर्णन करते हैं। महान महान योगी, महान महान भक्त सीधा रासलीला में नहीं घुसते हैं, वो क्या करते हैं भगवान के विभिन्न विभिन्न, क्योंकि भगवान है जहां जहां भगवान की बहुत सारे हैं, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार। तो इस स्कंद में हम भगवान के मनवंतर अवतार के बारे में बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं परीक्षित महाराज कि मुझे उन भगवान के मनवंतर अवतारों के बारे में गुणगान कीजिए अच्छे से, मैं उनको सुनने का इच्छुक हूं। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े मुझसे पहले भी बड़े बड़े साधु संत लोग उनके बारे में जानकर अपना जीवन सफल करते हैं। हम स्कंद 1 में जब 88,000 नैमिषारण्य जब सूता गोस्वामी जी से बात कर रहे थे, उनसे जब प्रश्न कर रहे थे, तो उन्होंने सिंपल से अपनी अपनी उत्सुकता जाहिर करते हुए बोला, बोला वयम तूना वित्रपयम उत्तम श्लोका विकर्मे यश्रृणवताम रस ज्ञानम स्वाधु स्वाधु पदे पदे। इतने सुंदर में अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो उनको बोल रहे हैं स्पीकर को, जैसे आप लोग श्रोता आपकी तरफ से आ रहा है क्वेश्चन, कि उनको बोल रहे हैं कि सूता गोस्वामी जी ये मत सोचिए हमको भूख लग रही है प्यास लग रही है और हम थक गए और हम बोर हो जाते हैं भगवान के बारे में, आप बोलते रहिए क्योंकि स्वादु स्वादु पदे पदे, हम हर पद पद पे हर शब्दों पे हर सेंटेंस में हम भगवान के लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, आप रुकिएगा मत, हम आपको अपने बारे में पहले से ही बता रहे, ये मत सोचिए कि क्लास एक घंटे की होगी दो घंटे की, जितना आप बोलना चाहते हैं आप बोलते रहिए। अब ये सेम वही परीक्षित महाराज यहाँ पे दोहरा रहे हैं, देखिए, विभिन्न मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकल्पों का तथा उनके प्रकट का वर्णन करते हैं, हम इन वर्णों को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूं, बताइए बताइए कृपया इनका वर्णन कीजिए। देखिए ये भाव होता है एक एक शिष्य का अपने गुरु के पास जाने का, वो ना केवल भगवान के सीधा कॉन्क्लूजन वाले सब्जेक्ट मैटर पे बात करता है, वो भगवान के ए से लेके जेड तक हर चीज के बारे में बात करता है। और इसका तीसरा श्लोक में बोलते हैं परीक्षित महाराज फिर से सुखदेव गोस्वामी को, हे विद्वान ब्राह्मण कृपया करके इस दिश्य जगत को उत्पन्न करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के उन सारे कार्यकल्पों का वर्णन हमसे करें जिन्हें उन्होंने विभिन्न विगत मनवंतरों में संपन्न किया, जो वर्तमान में संपन्न कर रहे हैं तथा जो वह भावी मनवंतरों में संपन्न करेंगे। देखिए कितना फोकस डाला गया यहाँ पे भगवान का। अगर हम अपने यहाँ पे देखें अपने इस्कॉन की बात को अलग अलग करके, अगर आप जितने सारे बाहरली आध्यात्मिक जो अपने आपको बोलती हैं आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, वहां पे आपको पहले जो 9 स्कंद है उनका वर्णन तो कहीं आता ही नहीं है, उनके पास बोलने के लिए सिर्फ एक ही स्कंद है और वो क्या है 10वां स्कंद, और 10वें स्कंद में भी एक ही चैप्टर है बोलने के लिए और वो क्या है भगवान की गोपियों के साथ गुह्यम रासलीला। क्या पूरे भगवान का वर्णन सिर्फ इसी में रह के गया है? नहीं, देखिए कितने सिस्टमैटिक तौर से हमारे जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने कितनी मेहनत करी है, 10वें स्कंद में आने से पहले कितने स्कंद है बताइए जरा मुझे, 9 स्कंद है, तो 9 स्कंद में कितना सिद्धांत प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान का इंटरनल अफेयर है, आप बिना किसी के जाने पहचाने उसके घर के मामलों में कैसे दखल दे सकते हैं, आपको कोई हक ही नहीं है। अभी मान लीजिए मैं किसी इंसान को पहली बार ही मिलता हूं और सीधा जाके उसको बोलूं प्रभु जी आपकी वाइफ कैसी है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपका उनके साथ क्या संबंध है, आप क्या करते हो सवेरे को, आप क्या करते हो शाम को, यार भैया तेरे को मेरे नाम के अलावा कुछ और पता ही नहीं है मेरे बारे में, तो मेरे इंटरनल अफेयर में क्यों जा रहा है। तो इंसान पहले क्या करता है, पहले 2 साल 4 साल 5 साल उनके बारे में जानता है, आप क्या करते हो, आपका काम क्या करते हो, आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितने लोग काम करते हैं, आपकी शक्ति कितनी, आपका इन्फ्लुएंस कितना है सोसाइटी में। अब ये सब जानने के बाद क्योंकि इंसान का आप रोज उनके साथ आपका संबंध बनता है, उठते हैं बैठते हैं वो आपको जानता है आप उनको जानते हैं, तो कहीं जाके 5-6-7 साल में वो आपको अपने बारे में बताता है, यार कल ना तेरी भाभी के साथ मेरी लड़ाई हुई थी, तो तब जाके वो अपने अंदर की बात धीरे धीरे, क्यों, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करता है। अभी कोई नया इंसान है, अब नए इंसान को हम अपने घर के हालत नहीं बता सकते हैं, तो अगर कोई हमसे ही आके पूछे कि आपके फैमिली लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको क्यों बताऊं भैया, मेरा फैमिली मैटर है, आपको उससे क्या स्वाद लेना है। तो इस करके क्योंकि हम सब यहाँ पे हिंदुस्तानी लोग हैं, हमने बचपन में भगवान के कितने सारे सीरियल्स देखे हैं, श्री कृष्णा है, महाभारत है, ये है वो है, उन सब का, और सब के सब भगवान की लीलाओं पे ही आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि हमको भगवान के बारे में थोड़ा बहुत कुछ नहीं पता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मगर वो सुनने के बावजूद आपका हृदय परिवर्तन कितना हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। कितने आकर्षित हुए भगवान के तरफ, बिल्कुल भी नहीं हुए हम आकर्षित। कहने को हम बोल सकते हैं या हम भगवान को जानते हैं ना, कृष्ण को अच्छे से जानते हैं ना, उनका ये लीला था वो लीला था वो लीला था, ये लीला आपको तब तक आपकी भक्ति को नरिश नहीं करेगी, आपकी चेतना को नरिश नहीं करेगी जब तक आप सिद्धांतों के अंदर अपने आप को डुबाएंगे नहीं। कहां पे किस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि लीला से पहले मुझे सिद्धांतों से जानना है, तत्व से जानना है, कौन बताएगा? अर्जुन 4.9 चौथा अध्याय भागवत गीता का नौवां श्लोक यही बोलता है। मगर ये जो सीधी बात जहां पे भगवान बोल रहे हैं, सीधी बात, ये तो उनके जन्म और कर्म के बारे में बताया कि वो सब दिव्य हैं, उनको आम इंसान नहीं समझ सकता, वो ऐसे भी करते हैं वैसे भी करते हैं, मैं अंदर भी हूं बाहर भी हूं, यार ऐसे कैसे हो सकता है? इंसान अगर अंदर है तो अंदर ही, बाहर है तो बाहर ही है, मगर अंदर बाहर एक साथ कैसे रह सकता है? ये आम बुद्धिजीवी के लिए समझना मुश्किल है। एक 18वें अध्याय में भगवान बोलते हैं 55 नंबर श्लोक में, भक्त्या माम अभी जानती यवन यशस्वी तत्वतः, तीसरा लाइन, ततो माम तत्वतो ज्ञातो विष्टे तद अनंतरम, कि मैं बता रहा हूं कि मैं भक्ति के द्वारा जा सकता हूं, मगर भक्ति में भी क्या है? तत्व के द्वारा। इधर उधर हमें पानी के ऊपर खेलना नहीं है, हमें सिद्धांतों के अंदर नीचे तक जाना है, गुह्यम ज्ञान करना है वहां पे। ततो माम तत्वतो ज्ञातो, कि जो मुझे तत्व से जानता है अंदर जाके, विष्टे तद अनंतरम, मतलब फिर वो ही जीव मेरे धाम लौटने के लायक है जो मुझे तत्व से जानता है। अगर हम तत्व से नहीं जानेंगे, अगर ऊपर ऊपर ऐसे घिलते रहेंगे, तो कितने सारे मायावादी ब्रह्मवादी लोग हैं बाहर जाके, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको आपके सिद्धांतों में हरा देंगे और आपको अपनी तरफ खींच लेंगे, चाहे आपको 50 साल हुए हैं, चाहे 40 साल या 35 साल। अगर आप हजारों की भीड़ में भी अकेले खड़े हैं और आपको ये पता है कि मैं कृष्ण को ही पूछ रहा हूं, तो क्यों पूछ रहा हूं, ये आपको मानना बहुत जरूरी है, वो आपको सिद्धांत ही बनाएगा। कितने सारे यहाँ पे लीलाएं होती हैं, देखिए वृंदावन में, बाहर में, ठीक है, 6-6 घंटा 5-5 घंटा कीर्तन होता है, लोग सुनते हैं, जाते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं, उठते हैं फिर वैसे के वैसे ही पड़े हैं, कि उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। तत्व के अंदर हृदय परिवर्तन होता है। अगर भगवान परम पुरुषोत्तम है तो क्यों है, किसने कहा गया है और क्यों कहा गया है, इसका वैदिक रेफरेंस कहां से मिलेगा हमें? ये मैं क्या मैं अकेले बोल रहा हूं? नहीं, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को बोला, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु, अब कोई बोले, प्रभुपाद जी लिखते हैं वहां पे तात्पर्य में, कोई बोले कि अर्जुन तो भगवान का मित्र था, बहुत ही घनिष्ठ मित्र था, अपने मित्र की बड़ाई करने के लिए उसने बोला कि आप परम ब्रह्मा हो, आप सबसे बड़े सत्य हो, आप परम धाम हो, आपको धाम बताया गया है कि सबसे, कि सब योगियों के आप डेस्टिनेशन हो, उनके गोल हो, उनके लक्ष्य हो, आप सबसे पवित्र हो, सबको बताया गया। मगर उन्होंने क्या बोला, मैं ये अकेला नहीं बोलता हूं, असित देवलो व्यासो, असित मुनि देवलो जी व्यास देव, कितने सारे उन्होंने रेफरेंस दे डाले, बड़े बड़े महान मुनि, ब्रह्मा जी हैं, नारद जी हैं, चतुर कुमार हैं, यमराज जी हैं, ये सब बोलते हैं, मैं उन सब का प्रमाण आपको दे रहा हूं, मैं अकेले नहीं बोलता हूं, शास्त्र खुद बोलते हैं, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभुआ इति सुषुमा, ये कौन बोल रहे हैं? ये यमदूत बोल रहे हैं, यमदूत बोल रहे हैं विष्णु दूतों को, कि जो वेद है वो नारायण है, और ये साक्षात इसमें लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट है, उनसे निकले गए हैं सारे कितने अवतार हैं। अभी आज के देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि यज्ञ कौन है, यहाँ पे यज्ञ अकुति जी के पुत्र हैं। तो जब उन्होंने देखा कि स्वयंभुआ मनु कितने सब कुछ राजकाट, बेटी की शादी कर दी, बेटों की शादी कर दी, उन सबको वहां पे लगा दिया है काम धंधे में कि आप करो, धर्म का पालन करो, गृहस्थी का पालन करो, आप ये देखियो, उसके बाद वो अपनी धर्मपत्नी शत्रुपा के साथ कहाँ चले गए? जंगल में, अपना जीवन का आखिरी समय भगवान के ऊपर केंद्रित करने के लिए। तो इससे पहले जो 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 10-12 श्लोक थे, वो स्वयंभुआ मनु अपने पैर के अंगूठे पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं और भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अपने आप को प्रीच कर रहे हैं, और वो गुणगान उन्होंने अपने मनगणत से नहीं किया है। उन्होंने क्या लिखा है आज के इसमें, इस प्रकार स्वयंभुआ मनु उपनिषदों के मंत्रों की जय ध्वनि करते हुए समाधि दस्त हो गए। तो उन्होंने वेद शास्त्रों के जो श्लोका थे उनको मेमोराइज किया। समटाइम प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर आप भगवान के सामने जाते हैं, उनसे उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हम 7 बजे का जो दर्शन आरती होता है, 7:15 का यहाँ पर होता है, तो हम गोविंदम आदि पुरुषम चलाते हैं, हम उनको बोलते हैं, उसमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। और अगर आपको और भी आते हैं मंत्र, भागवत गीता के श्लोक हैं, भागवतम के श्लोक हैं, भगवान का गुणगान कीजिए उन श्लोकों से, उनको बताइए, क्योंकि हमारे पास अपने कुछ शब्द नहीं है भगवान का गुणगान करने के लिए। हम आचार्यों के लिखित जो श्लोक है, जो कैसे उन्होंने गुणगान किया, जिस भाव से किया है, उन श्लोकों को याद करके भगवान के सामने बोलिए। ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे, 5 साल के, कभी स्कूल भी नहीं गए थे। जब उनको भगवान साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो वो बोले कि मैं तो कभी स्कूल भी नहीं गया, तो मैं कैसे आपका गुणगान करूं, मुझे शक्ति दीजिए। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, अपना शंख लिया, उस शंख से ध्रुव महाराज के सर को स्पर्श किया और वो धड़ाधड़ संस्कृत में भगवान का गुणगान करने लगे। धड़ाधड़ संस्कृत में भगवान गुणगान करने लगे। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान के सामने जाकर कुछ भी श्लोक हमें आते हैं अच्छे से याद करके, जिनका हमारे जीवन में बहुत ही भारी और गहरा छाप छोड़ी है, उनको भगवान के सामने दोहराइए, उनको भगवान के सामने देखिए। अभी देखिए स्वयंभू भृगु के साक्षात शासन काल के अंदर कितना भगवान स्वयं श्री यज्ञ, जब उन्होंने देखा कि मेरा शुद्ध भक्त स्वयंभुवा मनु किस तरह से तपस्या कर रहा है, तो उसको बाहरी दृष्टि से उसे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है, उसको भूख लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, कुछ हो रहा है, उसे कोई फर्क नहीं है, वो भगवान के ऊपर समाधि में पूरी तरह का लीन पड़ा हुआ है। तो इसको देखते हुए क्या करे, राक्षस लोग आए खाने के लिए क्योंकि उनको भूख लग रही है। ऐसे राक्षसों बोलता है यार नरभक्षी लोग होते हैं जो नरों को खाते हैं, आदमियों को खाते हैं, तो इनकी तरफ भागे। भगवान ने देखा मेरे भक्त को खाने के आ रहे, तो उनके पुत्र यमा और जो बाकी जितने भी देवती देवता थे उनके साथ आके उन सबका वध किया यहाँ पे। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की यहाँ पे सुरक्षा प्रदान करते हैं। न केवल इतना किया स्वयंभू मनु के शासन काल में, ये भी देखा कि जो इंद्र है, चंद्र है, ब्रह्मा है, शिवा है, ये कोई किसी देवी देवताओं के नाम नहीं है। ये हम श्रीमद् भागवतम में अच्छी तरह से पढ़ते हैं, ये क्या है, ये उपाधियां हैं। जैसे कि हम अपने मंदिर में क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, अकाउंट ऑफिसर, ये क्या है अकाउंट ऑफिसर, इसमें हमें नाम नहीं पता है किसी का, मगर वो उस पोस्ट है, उस पोस्ट को बोला जाता है। जैसे इसको है, इस पोस्ट को क्या 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 बोलते हैं, व्यास आसन, क्यों, क्योंकि ये व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व करती है ये आसन। तो वैसे ही ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है। तो उन्होंने देखा कि भैया कोई भी इंसान पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है इस पोस्ट पे बैठने के लिए, तो उन्होंने बोला मैं बैठ जाता हूँ, कोई बात नहीं। तो जितने भी उनके मेटीरियल अफेयर्स थे, चंद्रा इंद्रा जितने भी थी, डेमिगॉड अग्निदेव है, वायुदेव है, जैसे सब भगवान ने अपने अंशों से प्रकट किया, ओके तुम सब ले लो क्योंकि कोई क्वालिफाइड नहीं है। अब आप मुझसे कोई बताएगा कि कौन से ऐसे देवी देवता हैं जो इन सब पोस्टों पे जाके बैठते हैं, कौन से ऐसी जीव हैं, किन लोगों को ये पोजीशन मिलती है ब्रह्मा की, नहीं माता जी ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा सिद्धांत नहीं है। उसमें है कि जो 100 साल तक पूरी तरह से अपने वर्ण आश्रम का पालन करता है उसको ब्रह्मा जी का मिलता है, पूरी तरह से बिना उसमें किसी द्वेष के और बिना किसी त्रुटि के वर्ण आश्रम का, उसको जाके ब्रह्मा जी का मिलता है। देवी देवताओं का पोस्ट उन लोगों को मिलता है जो कि प्रभुपाद जी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में कि जो जीवा भक्ति करती है अच्छे से और उसमें अपने पायस है, मगर फिर भी उनका मानसिकता है कि वो कंट्रोल करें लोगों को कंट्रोल करें, ये सब मेरे कहने से चलना चाहिए, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं करी, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो, जिनकी मानसिकता है ना लोगों को कंट्रोल करने की। कंट्रोल का मतलब होता है यहाँ पे ईश्वर नाम दिया गया संस्कृत के अंदर, ईश्वर। प्रभुपाद जी लिखते हैं हम भी छोटे मोटे ईश्वर हैं, ईश्वर का मतलब है जो नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो हम लोग 3-4 लोगों को कंट्रोल करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक एक पति अपने घर वालों को पैसे दे रहा है तो घर वाले उसकी सुनते हैं, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, तुम ऐसे मत बैठो, तुम ऐसे स्कूल मत जाओ, इतने बजे तक घर आ जाओ, तो हल्का हल्का कंट्रोल करता है, मगर वो भी कुछ समय काल के लिए, जहां वो बूढ़ा हो जाता है, पैसे देने लायक नहीं रहता है, उसके घर वाले उसको लात मार के बाहर निकाल देते हैं, तो वो कंट्रोलर नहीं रहता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं हम थोड़े से समय काल के लिए छोटे छोटे गॉड है। गॉड की एक परिभाषा ये भी है कि ईश्वर है, मगर भगवान श्री कृष्ण वो सर्वत्र परमेश्वर है, अखिल ब्रह्मांड नायक, वो हमेशा से परम ईश्वर रहते हैं। तो ऐसे भक्त जिनको भक्ति करते हुए फिर भी उनके अंदर ये लालसा रहती है कि क्योंकि किसी को कंट्रोल करने में एक आनंद आता है, कहीं ना कहीं हमें हम सबको इस चीज का अनुभव है। प्रभु जी वहां मत बैठो, प्रभु जी ऐसा मत करो, तो कहता ठीक है प्रभु जी, तो अच्छा लगता है, देखा मेरी आज्ञा का पालन हो रहा है, मैं सबसे सुप्रीम हूं, लोग मेरे कहने पे उठते हैं बैठते हैं, ये चलता है, टेंपल चलता है, ऐसे करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नहीं, जब हमें ऐसी सब उपाधियां दी जाती है तो वो उपाधियां हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए दी जाती है, ना कि अपनी मानसिकता को नीचे गिराने के लिए दी जाती है। क्योंकि हर एक सेवा भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, ना कि हमें अपना नाम बढ़ाना है, हमें भगवान का नाम बढ़ाना है। चाहे हमारे को हमारी वैष्णव की दया से हमें कोई भी दी चाहिए, बोले प्रभु जी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के इंचार्ज हैं, प्रभु जी आप प्रसादम के इंचार्ज हैं, प्रभु जी आप क्लीनिंग के इंचार्ज हैं, प्रभु जी आप टेंपल प्रेसिडेंट हैं, प्रभु जी आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ये सब उपाधियां भगवान की सेवा को अच्छे से करने के लिए है, और जितने भी भौतिक जगत के लोग हैं उनके लिए एक फैसिलिटी तैयार करने के लिए, ताकि मेरे साथ साथ वो भी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सके, ना कि अपने झूठे घमंड को हवा देने के लिए। एक आता नहीं है घमंड में कि यार मैं ऊंचा हूं, कोई मेरे प्रभु जी सबसे पहले माला आपको, प्रभु जी सबसे पहले एक ऑफरिंग आपको, तो एक आता है यार कुछ तो है अपने अंदर, यू नो थोड़ा सा तो अपना अपना दम है इस भौतिक जगत में। तो ये जो उपाधि है ये हमें भक्ति में उठाने में बहुत ही बहुत भारी है, ये हमें उठने नहीं देती है, क्योंकि हर समय हमें क्या लगता है कि कल मेरा सम्मान हुआ, आज तो जरूर होना चाहिए, कल मुझे एक माला मिली, आज मुझे चार माला तो मिलनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे ये सब हमें, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, खाली हमें ही नुकसान होगा, हमारी तरक्की भक्ति में रुक जाएगी। तो ऐसे लोग जिनकी आदत है इतना सुनने के बावजूद भी, इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी, फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो जो आदत है वो इस जन्म की नहीं है, वो जन्मों खन्मों से आई हुई है, उठी हुई है, वो कहीं ना कहीं हमें रोकती है आगे भक्ति की तरक्की करने में। तो भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें नियंत्रित करने में आनंद आता है ना, चलो इंद्रदेव बन जाओ कि तुम नियंत्रित करो लोगों को, तुम अग्निदेव बन जाओ तुम नियंत्रित करो लोगों को। तो ऐसे लोग जो अपनी भक्ति में पायस हैं उनको ये डेमीगॉड्स की उपाधि दी जाती है। और प्रभुपाद बोलते हैं हमारे जो इस टाइम के जो ब्रह्मा जी हैं, वो इस टाइम के ब्रह्मा जी हमारे शुद्ध भक्त हैं, वो एक सेवा भाव में कर रहे हैं। देखिए जो जितना सेवा भाव में होता है ऊंचे पायदान पर पहुंचते हैं, बोलते हैं कि वो उतना ही उसे नर्म सुशील और सहनशील होना चाहिए उसे, कि उसको देख के लोग प्रेरित होते हैं, अरे बाप रे इतने ऊंचे पद पे बैठने के बावजूद में ये बंदा कितना नर्म है अपने स्वभाव में। वो ना केवल बोलता है बल्कि वो अपने जीवन में प्रैक्टिस भी करता है, वो लोगों को बताता भी है। तो कहते हैं अपनी आचरति प्रभु जीवे रे सिखाए, कि जो कोई भी शुद्ध भक्त होता है वो अपने आचरण से लोगों को सिखाता है। वो बोलता तो है ही है, बोलता बाद में है, इंग्लिश में बोलते हैं ना मंकी सी मंकी डू, बंदर देखकर बंदरों जैसी हरकतें करता है। छोटे छोटे होते हैं बच्चे, उनको सिखाने का सबसे सही तरीका होता है उनके सामने वैसा ही करो, आप बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा, अब ऐसे करो वो भी ऐसे करेंगे, इधर घूमो वो भी इधर घूमेंगे, अब जैसा करो वैसा ही करेंगे। तो ये बद्ध जीव को सिखाने के लिए जो शुद्ध भक्त है वो अपने आचरण से सिखाते हैं, क्योंकि इनको पता है बोलने से इन लोगों को समझ में नहीं आएगा, हजार बार बोलने के बावजूद भी ये हल्का सा एक स्टेप ऊपर उठाते हैं। तो सबसे बड़ा था कि जो वर्ड्स है उससे पावरफुल है एक्शन, कि आप अपने एक्शन से लोगों को सबसे ज्यादा प्रीच कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो शब्द हैं वो बाद में बाहर आते हैं, पहले हमारा आचरण, सबसे पहले हमारा मार्केट में जाता है, समाज में जाता है, कि प्रभु जी आप तो ऐसा कर रहे हैं, व्यासासन पे बैठ गए तो आप ऐसा बोल रहे थे, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है आपका। तो उससे क्या होता है, उनका जो फेथ है, उनकी जो श्रद्धा है वो टूट जाती है वहां पर करने के लिए। तो इसीलिए जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो उन्होंने अपने अंशों को वहां पे उठाया और बोला तुम लोग जाके इसी शासन को यहाँ पे करो करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अभी हमारे पास 15 मिनट है, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो प्लीज वो पूछ सकता है, और अगर किसी को कुछ जोड़ना है तो वो भी इसमें कुछ जोड़ सकता है।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी सेवा तो करते हैं, सेवा में कभी कभी आनंद नहीं आता है।
सेवा करते हैं, कभी कभी सेवा में आनंद नहीं आता है,
लगता है
तो क्या करें?
क्या करें?
तो इसका सलूशन क्या है, हल क्या है? प्रभु जी का प्रश्न है, हम सेवा तो करते हैं मगर सेवा में आनंद नहीं आता है। देखिए प्रभु जी, कोई भी सेवा है, चाहे वो सेवा मंदिर साफ करने की है, चाहे वो सेवा भगवान का माला करने की है, चाहे वो सेवा भगवान की कुकिंग या उनका श्रृंगार करने की है, वो हमारे आनंद के लिए नहीं है, वो भगवान के आनंद के लिए है। जब इंसान अपने आप को केंद्रित करता है कि मेरा आनंद है, तो यही आनंद हमें इस भौतिक जगत में बांधता है। तो जहां आपने ये सोचा कि ये आनंद मेरे भगवान का है जिनको मैं पूछता हूं, तो देखिए फिर आपका आनंद आएगा, क्योंकि आप अपने आप को सर्वप्रथम रख रहे हैं। हमें भगवान को सर्वप्रथम आगे रखना है, पहले भगवान का आनंद, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा आनंद। तो इसमें हमारे आनंद की नहीं है। इसका देखिए ना, इस भौतिक जगत में जो बद्धे जीव है वो अपने आनंद के लिए ही काम कर रहा है, इसलिए इस भौतिक जगत में अपने आप को बांध रहा है। तदार्थम कर्म कौन्तेया मुक्त संगा समाचारा, तो वो जो चीज है वो कर्म अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो हमें यहाँ से मुक्ति प्रदान होगी, हमें भगवत प्रेम प्रदान होगा। तो चाहे कुछ भी है, गुरु और गोरंगा की प्रसन्नता के लिए आप काम कीजिए। शायद आपको अच्छा ना लगता हो, कोई बात नहीं, वो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, प्रभुपाद जी ने एक बार बोला कि जो शिष्य होते हैं, डिसाइपल होते हैं, वो अपने गुरु के क्या होते हैं? तो एक ने बोला सर्वेंट, प्रभुपाद बोलते नहीं, मीनियल सर्वेंट, मतलब कि सेवक, सेवक नहीं, तुच्छ सेवक। तो जो भी बोले सिर्फ उसका एक ही काम है शिष्य का, यस सर, सिर्फ सलूट मार के काम करने का है, उसको अपना माइंड यूज नहीं करना है। क्योंकि जहां उसने माइंड यूज किया, उसका माइंड क्या करेगा? मेरा आनंद, मेरे लिए फैसिलिटी, मेरे खाने की प्लेट, मेरा पहला कीर्तन, नहीं, सिर्फ हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, बाकी उन पे छोड़िए। इस भाव से करेंगे फिर देखिए आपके हृदय में कितना आनंद अपने आप आएगा। ठीक है, आई थिंक प्रभु जी का प्रश्न है यहाँ पे।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु।
प्रभु जी जैसे हम देखते हैं कि लोग अलग अलग चार प्रकार की मुक्ति बताई गई है,
चार प्रकार की मुक्ति बताई
गई, मुक्ति बताते हैं, लेकिन भक्त के लिए अलाउड नहीं है।
भक्त के लिए अलाउड नहीं है?
हाँ, कहते अच्छा। भक्त को प्रार्थना नहीं सोचना है कि मुझे सारूप सारिष्ट जो हाँ। चार प्रकार की मुक्ति होती है
हाँ।
उसमें नहीं जाना है
हाँ।
लेकिन संसार के सब लोगों को देखकर डर लगता है कि यहाँ करेंगे क्या, हमें गोलोक वृंदावन जाने की तैयारी करना है। लेकिन बार बार हम जब आचार्यों की टीकाएं पढ़ते हैं या वैष्णव सॉन्ग बुक पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा रहता है कि हमें कहीं नहीं जाना, केवल सेवा करना है।
हाँ जी,
तो फिर किस भाव से हम ऊपर जाने के लिए मन बार बार कहता है कि हमें तो जैसे चेतन महाप्रभु या कृष्ण भगवान या गोलोक वृंदावन में नित्य लीला चल रही, उसमें जाने के लिए मन बार बार जाता है, लेकिन बार बार हमारे जो आचार्य बता रहे हैं कि नहीं जाना है, हमें केवल यही भाव रखना है कि बस सेवा करना है।
बिल्कुल, देखिए ये सबसे ऊंचा सिद्धांत है जहाँ पे ये बोला जाता है कि इसमें भी अगर आप ऐसे बोलें कि जैसे हम बाहर सुनते हैं कि चार प्रकार की जो मुक्ति है, तो चार प्रकार की मुक्ति में वो प्रभु जी वाला ही प्रश्न है, मेरी मुक्ति, तो फिर हमने अपने आप को आगे लगा दिया। इसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं आई, जो कि ज्ञानी लोग होते हैं, अष्टांग योगी होते हैं, वो अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं कि मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, फिर इसमें मैं आ गया, आई मी माई सेल्फ, कि मुझे करनी है, भगवान को मुझे प्रसन्न करना है, वो मेरा भाव नहीं है, मुझे इस भौतिक जगत से निकलना है। तो इसमें भी अपना ही स्वार्थ सबसे पहले है। तो इस करके हमारे जो आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी हैं, चैतन्य महाप्रभु बोले, अपने स्वार्थ को फेंको, चाहे आपको इस भौतिक जगत में भी रहना पड़े, तो आप एक चीज मांगो कि भगवान मुझे किसी भी स्थिति में रखना, पर इस स्थिति में रखना कि मैं आपका निरंतर ध्यान करते हुए आपकी सेवा कर सकूं। कि देखिए ना, भक्ति में जो प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति का इंग्लिश वर्ड है डिवोशनल, है ना, मगर प्रभुपाद जी अकेले डिवोशनल ही लिखते हैं, डिवोशनल सर्विस लिखते हैं, सर्विंग मतलब कुछ एक्शन है उसके अंदर, कुछ कार्य है उसके अंदर। प्यार का मतलब है, अगर अगर आप किसी को बोलते हैं मैं आपसे प्यार करता हूं, तो प्यार सिर्फ बोलने से नहीं है, उसको कार्य में भी लाना पड़ेगा। प्यार का मतलब होता है सर्विस। अभी कोई वाइफ बोले अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या बोलने से उनका पेट भर जाएगा क्या? नहीं, वो उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन करती है, घर घर को साफ करती है, कपड़ों को धोती है, तो उसका जो प्यार है वो अपनी सेवा देकर करती है। अगर बैठे बैठे सोफे पे बोले हाँ जी प्यार है, नहीं जी प्यार है जी, बहुत प्यार है जी, उसे आपको कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तो हम तो भक्त का यही यही सबसे बड़ा है कि मुझे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सेवा करनी है, और वो करने से आप ऑटोमेटिकली भगवान बोलेंगे भैया अगर तू मेरा शुद्ध भक्त हो गया है, तू मेरी सेवा कर रहा है, तो ये जो स्थान है ये सेवा के लायक नहीं है, ऊपर आ जा। तो आपको अपने आप ही ले जाएंगे वो ऊपर। तो फिर भी वो बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है, जहां जहां शिला प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि शुद्ध भक्त ये भी बोलता है कि मुझे नर्क में भेज दो, पर मुझे ऐसी जगह पे भेजना जहां आपके भक्त हो और मैं आपके बारे में गुणगान सुन सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। तो किसी भी हाल में रखो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं मैं, तो इस भाव ने। मगर अभी हमारा क्या भाव है, मुक्ति वो ज्ञानियों के लिए है, वो उनके लिए है, वो एक बहुत तुच्छ है, उसमें हमारा सेल्फ वो है। बिल्व मंगला ठाकुर बोलते हैं कि मुक्ति मेरे द्वार के आगे खड़े के भीख मांग रही हाथ जोड़ के मुझे अपनी सेवा में लगाओ, पर मुझे चाहिए ही नहीं है मुक्ति, चाहे मैं मुक्त हूं, मुक्त ऑलरेडी इंसान मुक्त हो चुका है, भक्त वो ऑलरेडी मुक्त है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं नारियल का, जब नारियल पक जाता है ना तो उसके ऊपर का शेल और जो अंदर का अलग अलग होता है, उसको ठक ठक करो ना आवाज आती है, इसका मतलब क्या है वो भौतिक जगत में होते हुए भी मुक्त है। ऐसे ही नहीं, आपको यहां से बाहर निकल के ही मुक्ति प्राण होगी, जिधर आपका ध्यान कृष्ण भावना पे पहुंचा हुआ है, पूरी तरह लीन है, आप ऑलरेडी मुक्त हो, आपको मुक्ति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी बद्ध जीव की चेतना से मुक्त होकर कृष्ण चेतना में आए हो, तो आप ऑलरेडी हो। चाहे आप आध्यात्मिक में हो चाहे भौतिक में हो, आपके लिए दोनों एक समान है, क्योंकि आप हर सिचुएशन में भगवान श्री कृष्ण को ही याद कर रहे हो, तो ये हमारी बन जाती है मुक्ति का कारण।
हरे कृष्ण। एक और क्वेश्चन
प्लीज प्लीज पूछिए ना।
मेरा बेटा 8 साल का है, लगभग 2000 श्लोक याद किया है वो,
2000
श्लोक याद किया है वो सारे ग्रंथों से।
हाँ।
लेकिन उसकी आसक्ति होती है कर्मण्या वाद का रस्ते मां फलेश्यू कदा, लेकिन उसकी इच्छा होती है कि कर्म कर रहा हूँ उसका फल चाहिए मुझे।
हाँ।
मतलब अभी जैसे वो अभी गया था गीता जयंती में, अक्षय पात्र में टॉप करके आया, तो वो उसको शील्ड मिलना थी, नहीं मिली तो अब उसके लिए 2-3 दिन सोया ही नहीं, तो उसकी
साल का है?
तो उसकी अभी आसक्ति मतलब हो गई फल लेने की, हमें फल लेना नहीं है।
कितने
तो उसको
साल का है?
8 साल का।
वो जी, अब 8 साल के बच्चे से क्या अपेक्षा कर सकते?
नहीं, मतलब उसकी आसक्ति को कैसे हटाए?
नहीं नहीं, अब ऐसा छोड़िए, अगर हम 35 साल के, हमारी भी आसक्ति कहीं और है, ऐसा नहीं कि हमारे बेटे की आसक्ति इसमें है, हमको भी नाम चाहिए, हमको भी चाहिए कि लोग हमें पहचाने, हमारे सामने सलाम करें, पर बेशक ये है कि हम लोगों को बोल नहीं रहे, हमें अपने आंगन में देखना चाहिए कि हम कितने शुद्ध हैं। छोटा सा बच्चा है ना, बच्चे को क्या चाहिए होता है? अभी अभी ये देखो छोटे छोटे से बच्चे भेज रहे हैं, इनको ना सुंदर कपड़ा चाहिए, ना इनको एप्पल का घड़ी चाहिए, ना इनको आईपैड चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए, एक चीज चाहिए, माँ खाने को दे दे, चाहे दवाई है, चाकू है, जूता है, ये उठाते सीधा अपने मुंह में डालना चाहते हैं, अब इनसे क्या अपेक्षा कर सकते हो? पर ये तो सोचो, जब हम 8 साल के थे कि हमने एक भी श्लोक किया याद, एटलीस्ट ने याद 4 तो करे हैं, उसका मतलब तो पता है, कहीं ना कहीं तरक्की तो करे, अभी तो छोटा सा बच्चा है, अभी उससे इतना बड़ा अपेक्षा मत कीजिए कि वो बने प्रहलाद बने, यू नो 5 साल की उम्र में, वो भी सीख रहा है, इतना आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि उसको एक भक्ति में जीवन दिया है, वो ऊपर उठेगा 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 उठ जाएगा वो अपने। अभी इतने समय इतना कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तब करो जब वो 16-17-20 साल की उम्र में जन जाता है, तब उसको देखो इसका रिझाव किसकी तरफ भाग रहा है। अभी छोटे से बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं, वहां पे घूम रहे हैं, चलता है उनका इतने।
थैंक यू जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।
एक प्रभु जी का प्रश्न है पीछे है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम,
धन्यवाद प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी, जैसे हम भागवतम में देखते हैं कि व्यासदेव जी ने भागवत की रचना की है, बट उन्हीं भागवत के अंदर संवाद चलते हैं, सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, और जैसे मैत्री मुनि विदुर का संवाद ये भी भागवत कह रहे हैं, तो लास्ट में रचना हुई है या रचना पहले हुई है तब इनका संवाद चला एक साथ?
प्रभु, जैसे एक शब्द है संस्कृत में, इसको बोलते हैं त्रिकाल दर्शी
जी महाराज,
त्रि अकाल दर्शी, ये भगवान को संबोधित है और ये भगवान के शुद्ध भक्तों को संबोधित है। त्रिकाल का मतलब कि तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। जो शास्त्र जो अच्छे जिनका गुह्यम करता है ना, उस शास्त्र के हिसाब से वो तीनों काल देख सकता है कि इसने किया क्या था, अब ये कर क्या रहा है और आगे इसकी स्थिति कैसे होगी, ठीक है ना। तो व्यासदेव जी जो है वो भगवान के अंश हैं, लिटरली इनकार्नेशन है उनका। ऐसे जन्म हुआ है कि वो शास्त्र लिख सके, तो उन वो अपना भविष्य देख सकते हैं, वो भूतकाल देख सकते हैं, वर्तकाल में भी क्या चाहते, ये पहले ही लिखा गया है, ये पहले ही लिखा गया है व्यासदेव जी ने इसमें। और जितने भी संवाद अगर देखिए कि दूसरे अध्याय के नौवें चैप्टर, दूसरे स्कंद के भागवतम के नौवें अध्याय के 33, 34, 35 और 36 ये जो श्लोक है इनको बोला जाता है चतुर्श्लोकी भागवतम, जो ये साक्षात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बोले थे। और ये ब्रह्मा जी ने जाके नारद जी को बोले चार श्लोकी, और नारद जी को बोला आप इसको आगे जाके इसको अपने आत्म साक्षात्कार से इसको एक्सपेंड करो, तो उन्होंने जाके व्यासदेव जी का व्यासदेव ने आगे जाके एक्सपेंड कर दिया श्रीमद भागवतम पुराण। तो ये ऐसे करके हमारे पास 18,000 श्लोक आए हैं। और ये जो श्रीमद भागवतम है ये वेदांत सूत्रों का सार है, जितनी भी सब चीजें, एक पेड़ है, पेड़ का सार क्या होता है, उसका फिट, उसका मीठा फल। तो जो भागवतम है ये एक मीठा फल है, इसका सबका सार है ये, जो कि व्यासदेव जी ने ही दे दिया था पहले से ही इसको पढ़ने से। क्योंकि ये जो पुराण है इनकी ऑलरेडी प्रेडिक्शन हो रखी है। प्रभुपाद बोलते ना आज के डेट में अगर कोई बोलता है कि मैं भगवान हूं, क्या आपके बारे में शास्त्रों में पहले से है क्या, लिखा गया है क्या, नहीं, अगर शास्त्रों में नहीं है तो हम नहीं मानते हैं। तो ये सब पहले से ही लिखा जाके कि कौन से काल में क्या होने वाला, कौन से काल में क्या होने वाला, कौन से काल में क्या होने वाला, तो कैसे पता इनको। तो शिला व्यास देव जी ने जितने भी शास्त्र लिखे उनको पहले से ही बता दिया था, अकबर आएगा, ये आएगा, मुगुल आएगा, जब सबके बारे में, सबके बारे में अशोक आएगा, सबके बारे में विवरण है। और 12वें स्कंद में तो ये भी बताया गया कि कल की अवतार इतने से टाइम पे इतने बजे आएंगे, उनके माँ बाप ये होंगे, वो यहाँ पे जन्म लेंगे, इतने काल में उठेंगे, इतने काल में सबका नाश करेंगे, तो पहले से लिखा जा चुका है, जो कि अभी आने वाला है कलयुग के आखिरी अंत में, और अभी सिर्फ 5,000 साल पूरे हुए हैं। तो इनके पास शक्ति है भगवान के, और ये साक्षात शक्ति आवेश अवतार है ये भगवान के, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।